نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. باب من شرب وهو واقف على بعيره, اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں پانی پینے کے بیان میں یہ باب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی اونٹ پر کھڑا ہوا ہو تو پانی پینا چاہے تو اس سلسلے میں یہ باب ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں اونٹ پر جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ قائد شمار ہوتا ہے, کھڑا ہوا شمار نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ بیٹھ کر پینے ہی کی کیفیت کے بیان میں باب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا منشا اصل میں یہ ہے کہ شریعت کی تعلیم تو یہ ہے کہ آدمی جو چیزیں پینے کی ہوتی ہیں ان کو بیٹھ کر پیے, پانی ہے, دیگر مشروبات ہیں, جو بھی ہیں, لیکن کبھی کبھی کھڑے ہو کر پینا چاہے تو اسی گنجائش ہے. اور گزشتہ باب یہی قائم کیا تھا, باب الشرب قائمہ, اسی کے ضمن میں ایک باب یہ بھی ذکر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر اون پر بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے پانی تناول فرمایا. تو اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا منشا یہ ہے کہ آدمی کھڑے کھڑے اگر پانی پینا چاہے تو پی سکتا ہے, لیکن پہلا والا باب زیادہ صریح ہے اس کے مقابلے میں. اس میں صراحتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے ہو کر پانی پینا معلوم ہوتا ہے. یہیں سے یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی کہ ایک ہوتی ہے سنت اور ایک ہوتی ہے حدیث. جب ان کا دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو ایسے موقع پر سنت کو ترجیح دی جاتی ہے, حدیث پاک کو نہیں. ایک علم بحث ہوتی ہے جو ذہن میں رکھنے کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی جو عادت ہے آپ کی, آپ نے کام جو کیے ہیں عموماً, تو عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ بیٹھ کر پانی پینے کا تھا, لیکن کبھی کبھی کسی حدیث میں کھڑے ہو کر پانی پینے کا بھی ذکر ملتا ہے. دونوں باتیں آپس میں ٹکرا گئے, ایک طرف یہ ہے کہ آپ خود منع فرما رہے ہیں کہ بیٹھ کر پینا ہے, کھڑے ہو کر نہیں پینا ہے, دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہیں, یہ حدیثوں میں ذکر ملتا ہے. تو دونوں باتوں میں آپس میں جو ہے نا ٹکراؤ ہے, تو ایسے موقع پر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. تو سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ نے بیٹھ کر پیا ہے, تعلیم اسی کی دی ہے, تو اس لیے پانی ہو یا دیگر چیزیں ہوں بیٹھ کر پینا چاہیے. اور اس کے مقابلے میں حدیث ہے کہ کسی حدیث میں آپ کے کھڑے ہو کر پینے کا ذکر ملتا ہے, تو یہ اس کے مقابلے میں جو ہے وہ اس حدیث کو ترجیح نہیں دی جائے گی, کیونکہ یہ کسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوتا ہے. یہ ہے تو حدیث کا اور سنت کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے, تو سنت کو ترجیح دی جاتی ہے, اور کبھی کبھار جو اللہ کے نبی نے عمل کیا ہے جس کا حدیث مبارکہ میں ذکر ملتا ہے تو اس کو ترجیح نہیں دی جاتی ہے. یا تو وہ بیان جواز کے لیے, یعنی یہ عمل بھی جائز ہے, آدمی ضرورتاً کر لے, تو وہ ضرورت کے مواقع کے لیے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو ہے نا بیٹھنے کا موقع نہیں ہوتا ہے تو کھڑے کھڑے پانی پی لیں, اس کی گنجائش. تو خیر حال یہ روایت ہے حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انھا ارسلت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقدح لبن, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا پیالہ بھیجا, وہ واقف عشیۃ عرفہ, اور آپ عرفے کے شام کے وقت میں جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے, فأخذ بیده فشربه, اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے اس کو لے لیا اور پی لیا. امام بخاری کا منشا یہ ہے کہ کھڑے کھڑے اللہ کے نبی نے پی لیا, لیکن اس وقت آپ جو ہے نا اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے, اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ امام بخاری کا منشا صحیح نہیں ہے یہاں پر. بہرحال لیکن دیگر روایات ہیں جو امام بخاری بتانا چاہتے ہیں, کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے پیا ہے تو کبھی کبھی آدمی پی گئے. اس کے بعد ہے باب الایمن فالایمن فی الشرب, پینے میں دائیں شخص کا پھر دائیں شخص کا جو ہے نا لحاظ کرنا چاہیے, اس باب میں یہ روایت ہے. یا دینے میں دائیں جو شخص ہے پہلے اس کو دینا چاہیے, پھر اس کے بعد جو ہے اس کو دینا چاہیے. اس باب میں روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی, فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بلبن, کہ اللہ کے نبی کے پاس دودھ لایا گیا, قد شیب بماء, جس میں پانی ملایا گیا تھا, وعن یمینہ اعرابی, دائیں جانب تو ایک دیہاتی صحابی تھے, وعن شمالی ابو بکر اور بائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے۔ فشریبا حضور نے پی لیا، ثم اعطى العربیہ پھر دیہاتی صحابی کو دے دیا، وقال اور فرمایا کہ الایمن فالایمن، دایاں زیادہ حقدار ہوتا ہے پھر دایاں زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں تیامن کی فضیلت جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے، دائیں جانب کو، دائیں پہلو کو، دائیں چیز کو اختیار کرنا چاہیے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ کام جو تعظیم اور تکریم کے قبیل سے ہوتا تھا تو اس میں دائیں چیز کو، دائیں پہلو کو اختیار فرماتے تھے، اور ہر چیز میں آپ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ مثلا کھانا کھا رہے ہیں تو دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں، پانی پی رہے ہیں تو دائیں ہاتھ سے پانی پئیں، سو رہے ہیں تو دائیں پہلو پر سو جائیں، کنگا کر رہے ہیں تو دائیں پہلو پر دائیں سر کے دائیں جانب پہلے کنگا کریں، کپڑے پہن رہے ہیں تو دائیں جانب سے پہلے۔ بڑی فضیلت ہے۔ قرآن پاک میں بھی اصحاب یمین کی تعریف کی گئی، اور اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، دائیں جانب والے بڑی فضیلت والے ہیں۔ کل قیامت میں نامہ اعمال جو دیا جائے گا وہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جس کے اعمال اچھے ہوں گے ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا۔ دائیں بائیں میں تھوڑا سا ہم کو کنفیوژن ہوتا ہے، تو رائٹ اور لیفٹ جو ہے رشتہ بھی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی دیکھیے دائیں بائیں ذرا سمجھ میں نہیں آ رہا، تو رائٹ اور لیفٹ میں، تو رائٹ کی تعلیم ہے اسلام میں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ جو چیزیں تعظیم اور تقریب کے قبیل سے ہیں ان میں رائٹ ہینڈ، رائٹ سائڈ یا رائٹ چیز کو جو ہے نا ترجیح دینا چاہیے۔ اس سے اندازہ لگائیں آپ کے دائیں جانب کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق پر اس شخص کو فضیلت دے دی، معمولی چیز نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے مقدس شخصیت ہیں ہمارے لیے، خلیفہ اول بلا فصل ہیں وہ، تو ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں، امت میں سب سے افضل مانتے ہیں ان کو، حضور کے بعد انبیاء کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ عام طور پر یہ جو ہوتا ہے نا کہ خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو لوگ افضلیت کے قائل ہیں، ایسا نہیں ہے، امت کا اجماعی عقیدہ ہے سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی ہیں۔ جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت بھی ہے۔ تو لیکن دائیں جانب یہ ایسی ہے، اور دایاں پہلو ایک ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق پر بھی فضیلت دے دی اس کو، یہ اسلامی تعلیم ہے، اسلام کا حکم ہے، بڑی اہم چیز ہے۔ تو اس لیے جو ہے عام طور پر ہم اپنے روز مرہ کے کاموں میں بھی اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ لینے میں، دینے میں، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں دایاں پہلو جو دائیں چیز، دایاں ہاتھ، دائیں پہلو کا استعمال کریں۔ عام طور پر اس میں کوتاہی ہوتی ہے، اب تو فیشن ہے بائیں ہاتھ سے کھانے کا، بائیں ہاتھ سے پینے کا، بائیں ہاتھ استعمال کرنے کا فیشن، بائیں ہاتھ سے پینا ایک فیشن ہے۔ چائے کافی عام طور پر جو ہے نا بائیں ہاتھ سے پی جاتی ہے، لوگ پیتے ہیں ہوٹلوں میں، حالانکہ مسلمان ہیں بھائی، نبی کے نام لوا ہیں، عشق رسول، محبت رسول پورا پایا جاتا ہے بقول ان کے، دعوے بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن عمل جو ہے نا وہ نبی کے سنتوں کے مطابق نہیں ہوتے ہمارے، سنتوں کے تقاضے کے مطابق نہیں ہوتے ہمارے۔ البتہ جو چیزیں ایسی ہیں جو تعظیم والی نہیں ہیں تو وہاں پھر بایاں پہلو، بایاں ہاتھ، بائیں دانی بھی استعمال کی جائے گی، جیسے ناک صاف کرنا ہے مثال کے طور پر، تو ایسے موقع پر بایاں ہاتھ استعمال کیا جائے گا۔ اسی طریقے پر آدمی ریسٹ روم کو چلا جائے تو وہاں پر بایاں ہاتھ استعمال کرے گا، آدمی مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو دائیں پیر کے ذریعے داخل ہوں گے، لیکن جب نکل رہے ہیں تو بایاں پیر پہلے باہر نکالیں، وغیرہ وغیرہ۔ جہاں اکرام ہوگا وہاں دایاں پیر، دایاں ہاتھ، دائیں جانب ہوگی، جہاں اکرام نہیں ہوگا تو پھر بایاں ہاتھ یا بائیں جانب استعمال کریں گے وہاں پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دیہاتی صحابی کو دے دیا۔ علماء نے ایک اور اچھی بات بھی نقل کی ہے یہاں پر کہ شریعت نے ایک ضابطہ یہاں پر متعین کر دیا امت کی سہولت کے لیے۔ ہمارے بخاری کے جو استاد تھے مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یہ بات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پر، شریعت نے ضابطہ بیان کر دیا کہ اگر امت پر چھوڑا جاتا ہے کہ فضیلت کی بنیاد پر جو ہے نا تم جو ہے نا چیزیں تقسیم کرو تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ بھائی آدمی کیسے کس کو فضیلت دے گا، کون جو ہے نا زیادہ فضیلت والا ہے؟ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی کے نزدیک مسجد کی فضیلت مسلم ہی نہیں ہوتی، بھائی وہ افضل ہے ہی نہیں ہے، عام آدمی کیسے طے کرے گا، عام مہمان کیسے طے کرے گا؟ چار آدمی بیٹھے ہوئے، چار مہمان آ گئے، ان میں سے کون فضیلت والا ہے، کس کو ترجیح دی جائے گی یہاں پر؟ دوسرا یہ ہے کہ ایک کو فضیلت، اگر افضلیت فضیلت کی بنیاد پر اگر تقسیم کرنا ہے تو پھر ایک کو دیں گے، دوسرے کو نہیں دیں گے، دوسرے نمبر بعد میں آئے گا، تیسرے نمبر بعد میں آئے گا، تو یہ دوسرے کی بچگنی بھی ہوگی اس میں، میرا درجہ شاید کم ہے پھر، تو میں جو ہے نا فلاں سے چھوٹا ہوں، اس وجہ سے جو ہے نا مجھے بعد میں دیا گیا، مجھے بعد میں رکھا گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ شریعت نے ضابطہ متعین کر دیا دینے کے بارے میں، अगर उम्मत पर ये मसला छोड़ दिया जाता, लोगों में ये मसला छोड़ दिया जाता कि भाई अफजल होने की बुनियाद पे तुम तकसीम करो, तो फिर एक तो तकसीम करना बड़ा मुश्किल होता, दूसरा दिल छिकनी भी होती हो। बड़ी अहम बात जिक्र फरमाई यहाँ पर। हमारा ज़ाबता यही है कि हम अब मदरसों में जो हम तकसीम करते हैं किसी को कोई चीज़, तो दाई मेहमान की, मेज़बान की जो दाई जाने पर, वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए देने में, खाने में हो पीने में। शरबत आ गया मिसाल के तौर पर, तो अब देने में दाई जाने से शुरुआत की जाए उसकी, ये तरतीब मदद रखनी है। एक बात ये है, एक और वजह उलमा ने यहाँ पर यह भी लिखी है कि एक बात इसके हवाले से ये है कि यहाँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाईं तरफ को तरजीह देने की तालीम और तरगीब दी है। बाद रिवायत में ये मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े होने की बुनियाद पर भी फजीलत दी, जैसे यानी किसी के बारे में कोई चीज़ देना था तो हुज़ूर ने फरमाया कि कबीर कबीर, पहले बड़ों का हक है, बड़ों को यानी बड़ों को बड़ा समझो, बड़ों को बोलने दो, बड़ों को करने दो। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि बड़ों को तरजीह देनी चाहिए या दाई दाने को तरजीह देनी चाहिए? दो हदीसों में आपस में टकराव हो गया। तो फरमाते हैं कि एक तो इस हदीस का जो ताल्लुक है दाई दाने वाली, इसका ताल्लुक, एक जवाब उसका ये है कि इसका ताल्लुक खाने में पीने में इन चीज़ों से मुतालिक है। आप कोई चीज़ पेश कर रहे हैं ज़ियाफ़त के तौर पर, मेहमान नवाजी के तौर पर, तो वहाँ पर दाई जाने से शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन जहाँ जहाँ पर बोलचाल का मौका है, बोलचाल करने का हुक्म है, तो वहाँ पर बड़ों से शुरुआत करनी चाहिए, फिर वहाँ छोटों से नहीं। तो ऐसे मौके पर बड़ों को तरजीह दी जाएगी। या फिर जो है ना, ये हदीस यानी कबीर ये उस वक्त है जबकि दायां बायां पहलू ना हो, सामने अगर कोई लोग मौजूद हैं, मिसाल के तौर पर मेहमान के सामने दो लोग बैठे हुए हैं, या ऐसी सूरत हाल है कि पूरे के पूरे जो है ना दाई साइड में बैठे हुए हैं, तो शुरुआत किससे करेंगे? तो ऐसे मौके पर बड़े को दिया जाएगा। फिर वहाँ पर अगर दाएं बाएं हैं या ऐसे हैं कि राइट और लेफ्ट हो सकता है, तो वहाँ पर दाएं को दिया जाएगा, राइट साइड वाले को दिया जाएगा, बाद में लेफ्ट साइड वाले को दिया जाएगा। लेकिन अगर सब बैठे हुए हैं एक साथ एक ही जानब में, दाएं बाएं नहीं है वहाँ पर, लेफ्ट और राइट नहीं है वहाँ पर, तो ऐसी सूरत में बड़ों से शुरुआत की जाएगी। फिर तो रमान इसका एक जवाब ये भी दिया है। तो बहरहाल शरीयत ने दोनों के ज़ाबते बयान फरमा दिए, अगर राइट लेफ्ट नहीं है तो वहाँ पर बड़ों को दिया जाए, उनको जो है ना फजीलत दी जाए। लेकिन अगर राइट लेफ्ट है तो फिर राइट वाले को तरजीह दी जाएगी। तो बहरहाल ये रिवायत। उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने एक और बाब कायम किया, बाब हल यस्तअज़िनु अर्रजुलु मन अन यमीनिही फि शुर्बि लियुअ्ति अल-अकबर। ये बाब इस बात के बयान में है कि क्या कोई आदमी उस शख्स से इजाज़त चाहेगा जो उसकी दाईं जानिब में है पीने के सिलसिले में, ताकि वो बड़े को दे दें। रिवायत का हासिल यह है कि हज़रत सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा मशरूब लाया गया, पानी वगैरह लाया गया, आपने पानी यह था या दूध था, तो आपने जो है ना उसमें से पी लिया। आपकी दाईं जानिब एक गुलाम बैठा हुआ था, लड़का था, और बाईं जानिब बड़े बड़े शुयूख बैठे हुए थे। तो हुजूर ने फरमाया कि जो गुलाम थे, जो लड़के थे, उनसे फरमाया कि अता अदन वली अन उती हा वला, फरमाया कि क्या तुम इजाज़त दे दो कि मैं इन लोगों को दे दूँ, ये बड़े हैं, यानी हक तो तुम्हारा है, अगर तुम अपना हक छोड़ना चाहोगे तो फिर मैं इनको दे दूँगा। तो उन्होंने फरमाया कि या रसूल अल्लाह ला उसी बिना से भी मिनका अहदा, कि भाई आपका जो है छोड़ा हुआ है उस पर मैं किसी को फजीलत नहीं दे सकता, वो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। तो तरजीह नहीं दी उन्होंने, फरमाया कि या रसूल अल्लाह वो तो मैं ही इस्तेमाल करूँगा। उन्होंने लिया, फिर इस्तेमाल कर लिया। ये रिवायत है। तो अगर कोई ऐसी नौबत आ जाए कि दाईं तरफ छोटे लोग बैठे हुए हैं या बच्चे बैठे हुए हैं और बाईं तरफ के लोग बड़े बड़े हैं, तो ऐसे मौके पर उनसे पूछ कर देना चाहिए, बगैर पूछे कि भाई ये बड़े हैं, इनके हवाले कर दिया जाए, ऐसा ना किया जाए। लेकिन ये अहकाम जो हैं ये मुस्तहब हैं, ये सुन्नत हैं। अगर आदमी लिहाज करेगा तो बाईस अजर होगा, लेकिन अगर कोई लिहाज नहीं करेगा तो खिलाफ़ सुन्नत करने वाला होगा वो, क्योंकि खिलाफ़ सुन्नत अमल छोटा नहीं होता, क्योंकि इससे उससे भी बचना चाहिए। तो फरमाते हैं हज़रत सअद बिन सअद रज़ियल्लाहु अन्हु के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदिया बिशराबिन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई मशरूब लाया गया, फशरीब मिनहु, तो आपने उसमें से पी लिया, वान यमीनिही गुलाम, आपके दाईं जानिब एक लड़का था, वान यसारिही अशियाखु, और आपके बाईं जानिब में बूढ़े बड़े हजरात बैठे हुए थे। फ़क़ाल लिल गुलामी अता अदन वली अन उतिया हाउला, तो आपने लड़के से कहा कि क्या तुम इजाज़त दोगे मुझे कि मैं इन लोगों को ले लूँ। यहाँ अल्लाह के नबी देना चाहे तो दे सकते थे, लेकिन हुजूर इजाज़त चाह रहे हैं। इससे बात मालूम हुई है कि भाई शरीयत का ज़ाबता सबसे ऊँचा होता है, शरीयत की तालीम ही सबसे ऊँची है। जहाँ पर शरीयत आ जाए वहाँ पर उसकी तामील की जाएगी। वहाँ पर आदमी जो है ना अपने बड़े होने को जो है ना जाहिर नहीं करेगा, या अपने बड़े होने के नाते फैसले नहीं लेगा। फिर अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि शरीयत का ज़ाबता ये है, इनको अगर देने के लिए कहेंगे तो मैं दे दूँगा, वरना तो नहीं। तो कहने लगे कि तो वो लड़के कहने लगे कि या रसूल अल्लाह ला उसे भी नसीब मिल कर रहा था, तो मैं मेरा हिस्सा आपसे जो छोटा हुआ है उसमें जो है ना मैं किसी को तरजीह नहीं देता हूँ। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना उनके हाथ फतल्लाहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी यदिही, आपने उनके हाथ में फिर जो है ना उसको रख दिया, उन्होंने लेकर पी लिया। फिर इससे एक बात ये भी मालूम होती है कि जो बचा हुआ होता है बुजुर्गों का बड़ों का उसमें एक बरकत होती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मुबारक अगर किसी को लग जाए, आपका दहन मुबारक लग जाए, तो उससे बड़ी बरकत की कोई चीज़ नहीं है। और सहाबाए किराम इस अकीदत और मोहब्बत के साथ यानी इसका असर अपने ऊपर लेते थे, आप उसको बयान नहीं कर सकते। हम मोहब्बत करते हैं, सब कुछ करते हैं, जैसे आप सल्लम ने एक मरतबा एक लड़के के हाथ पर हाथ रख दिया, उन्होंने ज़िंदगी भर बाल नहीं कटाए उतने हिस्से के, कि यहाँ अल्लाह के नबी का हाथ लगा हुआ है, अगर मैं बाल काटूँगा तो बालों की बेहरमती हो जाएगी। ऐसी अकीदत और ऐसी मोहब्बत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशकीदे समूह लगा कर चमड़े के जो जानवरों के चमड़े होते थे उसके जो है ना बैग वगैरह बना दिया जाता था, उससे जो है ना पानी पिया करते थे, उसमें पानी भर लेते थे। तो एक मरतबा आपने अपना मुँह लगाया और मुँह लगा कर दहन मुबारक से पानी पी लिया। सहाबिया ने वो हिस्सा काट लिया, काट कर रख लिया कि अल्लाह के नबी का जब दहन यहाँ पर लग गया है तो अब किसी का मुँह यहाँ पर लगना ये बेदबी है, नहीं लगने दूंगी, उसको काट कर ही रख लिया। ऐसी अकीदत और मोहब्बत हुआ करती थी। फिर आपका लुआब मुबारक तो जो है ना बड़ा जाहिर सी बात है कि अगर लग जाए, दहन मुबारक लग जाए तो बड़ी सआदत की बात है। तो सहाबा इकराम चाहते ही नहीं थे कि हमका हाथ से गंवा जाए, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वजू करते थे तो वजू का पानी नीचे नहीं गिरता था, सहाबा उठा लेते थे उसको, सहाबा उस पानी को ले लेते थे। आप ने हजरतुल वदा के मौके पर अपने बाल काटे हैं तो सहाबा में तकसीम फरमा दिए तबरुक के तौर पर, बरकत के तौर पर, कि भाई ये बरकत के हैं। सहाबा को बुलाया, बुला कर दिया अल्लाह के नबी ने कि मेरे बाल हैं। और हुजूर के बालों की शिफा, बालों का असर ये था कि हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि पानी में उनके पास बाल रखा हुआ था, लोग बीमार होते थे, जब घर आते थे तो लोग कहते थे कि घर आते और कहते कि भाई फलां घर में बीमार है, पानी लेती पानी में जो है ना बाल डुबाती निकाल देती पानी दे देती, पानी पीता मरीज शिफा याब हो जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों का असर ये था। और लुआब का तो क्या कहना, बल्कि आपके फुसलात इजमाए उम्मत के तौर पर ये पाक हैं। आदमी यानी हमारा आपका जो खून है, आपका जो बराद है, आपका जो पेशाब है, उलमा ने लिखा है कि ये पाक था या नापाक नहीं था ये। और इसीलिए इसका असर ज़मीन पर नज़र भी नहीं आता था, ज़मीन उसको जो है ना ले लिया करती थी। आप कभी ज़रूरत से फारिग हो जाते हैं तो ज़रूरत से फारिग होने के बाद उसका असर ज़मीन पर दिखाई नहीं देता था। एक मरतबा हुआ यह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़माने में, ज़ाहिर सी बात है कि जो यानी बैतुल खला तो ऐसे बने हुए होते नहीं थे, जाने बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। तो रात में किसी वक्त आप सल्लम बेदार हुए, कज़ाए हाजत की ज़रूरत हुई, पेशाब वगैरह की ज़रूरत महसूस हुई, तो आपने एक बर्तन में अपना पेशाब रख दिया, वहीं पेशाब किया, उसके बाद नीचे उसको रख दिया। सुबह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ालिबन हज़रत उम्मे हानी थी या कोई और सहाबिया थी, उनसे फरमाया कि भाई इसको फेंकना है। वो ले गई, लेकर चली गई, उसके बाद जो है यानी जो करना था कर दिया, ले जाकर पेशाब को पी लिया, उन्होंने फिर वापस लाकर रख दिया। हुजूर ने पूछा कि क्या हुआ तुमने फेंक दिया, तो कहने लगे रसूलल्लाह महफूज हो गया, यानी ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया कि इसमें फेंकने का माना नहीं था, हुजूर समझ गए। उसके बाद फरमाया कि खिताब करके फरमाया कि भाई आज से कभी तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होगा। फिर वफात हो गई, पेट में दर्द नहीं हुआ उनके। फिर हुजूर के फजलात थे, हुजूर का बराज था, हुजूर का जो है ना पेशाब था इतना पाकीज़ा था, तो कैसे आपके लुआब को छोड़ देते थे। तो उबा इब्न मसूद सकफ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा यानी जिस वक्त सुलह हुदैबिया हो रही थी तो उस वक्त आए थे, तो वो यही देखकर हैरान रह गए थे कि भैया मोहम्मद के अजीब शख्सियत हैं कि इनके वजू का बचा हुआ पानी तक सहाबा नीचे नहीं गिरने दे रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे जानिसार सहाबा उनके हैं। इसलिए हमको ये समझने की, ये चीज़ यहाँ हमको नोट करने की और समझने की है कि ये जो कहा जाता है ना हमको कि अल्लाह के नबी के सहाबा ने यह काम किया है या नहीं, ये देखा जाए। अगर सहाबा ने किया है तो करो, सहाबा ने नहीं किया है तो मत करो। ये जो कहा जाता है ये यूं ही नहीं कहा जाता, क्योंकि अकीदत मुकम्मल उनके अंदर पाई जाती थी, मोहब्बत उनके अंदर पूरी पाई जाती थी, हमदर्दा इश्क उनके अंदर पाया जाता था। उसके बावजूद शरीयत के अहकाम में एतदाल को उन्होंने मलबूज रखा है, मोहब्बत में गुलू नहीं किया, मोहब्बत में गुलू नहीं किया। ये इसीलिए कहा जाता है कि भाई सहाबा इकराम में तुमसे हज़ार दर्जे ज़्यादा इश्क और मोहब्बत पाया जाता था। तो वो काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से, जैसे सीरतुल नबी शुरू हो रहा है, बहुत से काम हम ऐसे करते हैं कि सीरतुल नबी के हवाले से बिदात के जुमले में आते हैं, खुराफात के जुमलों में आते हैं, उनसे बचना चाहिए। क्या कहा जाता है, यही कहा जाता है कि भाई ये मिसाल के तौर पर इस तरह ये चीज़ मनाई जा रही है। ऐसे आमतौर पर बारह रबीउल अव्वल को सीरतुल नबी के हवाले से जो है जुलूस निकाले जाते हैं, अब लोगों को अगर कहें कि भाई ये सहाबा ने निकाला है तो कहते हैं कि भाई तुम बिदाती है, तुम बहावड़े, तुम पकौड़े, तुम फलाए, तुम फलाए, तुमको क्या मालूम है, इस तरह के ताने दिए जाते हैं। यही कहा जाता है कि भाई अल्लाह के नबी की विलादत होने के कई साल तक सहाबा इकराम दुनिया में बाहियात रहे, जज्बा अकीदत और मोहब्बत उनके अंदर ज़्यादा था, इश्क रसूल उनके अंदर ज़्यादा था, उन लोगों ने नहीं किया तो तुम लोग क्यों कर रहे हो? फिर बात समझ में आ रही, ये मोहब्बत में कर रहे हैं तो मोहब्बत में ये क्या चीज़ तुम लोगों ने ईजाद कर दी है, ये चीज़ समझने की है। नतीजा ये होगा कि उलमा ने लोग कहा, अब मेरे यहाँ आने से पहले हमारे पास भी हैदराबाद में ख़ासतौर पर जो है ये सिलसिला शुरू हो गया था 12 रबीउल अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है पैदाइश के उनवान से मनाने का, मीलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीलाद तो मतलब हुजूर पाक सल्लम की विरादत बहुत बड़ी सआदत, बहुत बड़ी बरकत है हमारे लिए और आदमी के लिए, हर वक्त उसका एहसान मंद होना और उसका शुक्र अदा लाना ज़रूरी है। हम ये कहते हैं कि मीलाद अगर मनाना हो तो हर पीर को मनाया जाए जो आपने मीलाद मनाई है, हर पीर को, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि पीर को मैं रोज़ा रखता हूँ क्योंकि मैं उसी दिन पैदा हुआ हूँ। तो मीलाद का सुन्नत तरीका तो ये है, सुन्नत को हमने छोड़ दिया, गैर सुन्नत तरीकों को हमने ले लिया। पीर को रोज़ा रखें, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुक्राने में अल्लाह के नबी ने जो किया है वो करें। अब ये सूरत है तो मैं जो जिक्र कर रहा था वो ये था, आहिस्ता आहिस्ता इतना ज़्यादा जो है ना उसमें हुलू हो गया कि अब जो है मीलाद के नाम पर जलसे होने लगे हैं, जलसों में लड़के लड़कियाँ दोनों डांस कर रहे हैं। हमारे पास न्यूज़ों में ये चीज़ शाया हुई थी, अखबार में आ गई ये चीज़ें, क्या हुई, ये सूरत नबी का जलसा है, इन मीलादुन नबी ये मनाई जा रही है जिसमें लड़के लड़कियाँ डांस कर रहे हैं। चार मीनार के पास जो है ना बाजार था, स्टेज लगाकर हैदराबाद की सबसे मशहूर जगह है, वहाँ स्टेज लगाकर उस पर नाचा गया, उसको रिकॉर्डिंग जो है ना महफूज की गई। फिर तो उलमा ने रुका, ये बिदात है तो बात समझ में नहीं आई, अब बच्चे बच्चियाँ मिलकर नाचना शुरू कर दिए, हुजूर की खुशी है, ये पैदा होने की खुशी में जो है ना ये सब हरकतें की जा रही, पता नहीं क्या क्या हरकतें हो रही थी। बाजाबा यानी 12 रबीउल अव्वल को फिर एक और नमाज भी पढ़ी जाने लगी, 2 रकत नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में जमा होकर, वो भी ईद के उनमा जब नमाज पढ़ी जा रही है। भाई अल्लाह के नबी ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया। मैं असल में जो बात अर्ज कर रहा था वो ये थी कि भाई सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को हद से ज़्यादा मोहब्बत, हद से ज़्यादा इश्क था और इश्क के तकाज़ों पर मुकम्मल अमल किया करते थे, अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार थे। तो उन लोगों ने जो किया है हमारे लिए वही काफ़ी है, जो नहीं किया है हमारे छोड़ने के लिए वही काफ़ी है, ये चीज़ समझने की है हमारे लिए। तो बहरहाल बात ये जो मैं अर्ज कर रहा था, तो बड़े बुजुर्गान दीन के जो है ये जो जो बचे हुए होते हैं उन्हें अल्लाह तबारक व तआला बचाते रखते हैं। इसीलिए तहनीक का हुक्म है, तहनीक जो होती है ना बच्चे के पैदा होने के बाद जो है खजूर और शहद को चबा कर जो है ना वो बच्चे को चढ़ा दिया जाता है सबसे पहले, ताकि बुजुर्गी असरात जो है ना वो बच्चे के अंदर पैदा हो जाए, नेक औसाफ बच्चे के अंदर आ जाए उसकी बरकत से, एक जो है ना एक नेक फाली है उसके जरिए, और होता भी है सर इस्लामी तालीम में। अब डॉक्टर ये सब मना कर रहे हैं कि छोटे बच्चे को शहद खिलाना ये साइंस के खिलाफ है, शहद चटाना जो है ना ये साइंस के खिलाफ है, खजूर चबा कर खिलाना ये साइंस के खिलाफ। जो डॉक्टर कह रहा है वो डॉक्टर उसी माहौल में पलकर बड़ा हुआ है, डॉक्टर की वीडियो मैंने देखी है वो मना कर रहा है कभी ये समझ में नहीं आती बात, ये छोटा बच्चा है क्या है क्या है, भाई उसको बतौर ग़िज़ा के नहीं दी जा रही है वो चीज़, तबर्रुक के तौर पर चटाई जा रही है उसको, और रोज़ाना नहीं खिलाया जा रहा है, एक मरतबा चटाया जा रहा है, रोज़ाना अगर खिलाई जाती है बच्चे को तो ठीक है, बात समझ में आती है कि भाई सेंस नहीं है, भाई ये बच्चा है ग़िज़ा का तहम्मुल नहीं कर सकेगा, एक मरतबा उसके मुँह में चटाया जा रहा है तो चटाने में तो कोई हर्ज नहीं है, दूसरी चीज़ें और भी तो चाटता है बच्चा, समझने की चीज़ है। तो ये सुन्नत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहरीक करवाना। तो बहरहाल तबीयत तौर पर अगर किसी को किसी के झूठे से जो है ना तबीयत तनफ़ुर हो तो वो अलग बात है, थानवी रहमतुल्लाह अलैह ज़ाहिर सी बात है कि बड़े सूफिया में से गुजरे हैं, लेकिन फरमाते थे कि झूठे को मैं कभी जो है ना पसंद नहीं करता, मेरे बुजुर्गों का झूठा मुझे खुद पसंद नहीं आता। तो तबीयत तौर पर कराहत अगर किसी को कुछ हो जाए तो अलग बात है वो, लेकिन जो है ना इसको रद्द नहीं किया जा सकता। यहाँ इस हवाले से एक बात और भी है, एक हदीस पाक हम आमतौर पर सुनते बोलते हैं कि सूरुल मोमिनी शिफा, मोमिन के झूठे में शिफा होती है, तो ये हदीस नहीं, ये भी जहन में रहना चाहिए। अलबत्ता मोमिन के नेक बुजुर्गों के झूठे में, झूठा यानी उनका जो बचा हुआ होता है, जो उनको जो इस्तेमाल करके वो छोड़ देते हैं, उसमें अल्लाह तबारक व तआला बरकत रखते हैं, आदमी एतकाद के साथ अगर पिएगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी बरकत हासिल होगी। तो बहरहाल ये आसार वगैरह का सबूत इसके ज़रिए मिलता है, तबरुकात का सबूत इसके ज़रिए मिलता है, ये जहन में रहना चाहिए। उसके बाद बाब है बाबुल करई फिल हौज़, हौज़ में मुँह लगा कर पानी पीने का बयान में यह बाब है। ये इस बाब में रिवायत है हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हु से, फरमाते हैं कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफ़अ अला रजुल मिन अंसार, अल्लाह के नबी अंसार के एक शख्स के पास दाखिल हुए, व मअहु साहिबुन लहु, आपके साथ एक और भी साहिब थे, वसल्लम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर ने सलाम किया, व साहिबुहु और हुज़ूर के साथी जो सहाबी थे उन्होंने भी, तो फरद रजुल, तो उस शख्स ने जवाब दिया, फ़क़ाल या रसूलल्लाह, कहने लगा कि या रसूलल्लाह भी अभी अंत बाऊँगी, मेरे बाबा वापस क़ुरबान हूँ, और वो गर्मी का मौसम था उसको, तो सहाबा ये बार बार जो है ना आमतौर पर कहते थे या रसूलल्लाह मेरे बाबा पर कुर्बान हो, یہ جملہ جو ہے نا ان کا لفظاً نہیں ہوتا تھا, حقیقتاً ہوتا تھا. وقت آئے تو قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا تھے کہ واقعتاً ہم بھی قربان اور ہمارے ماں باپ بھی آپ کا قربان ہیں. اس کی مثالیں ملتی ہیں ہم کو احادیث کے اندر. تو فرماتے ہیں کہ وہ یحبل فی عید لہو, اور وہ جو ہے نا اس وقت دیوار پر یعنی اپنے باغ میں جو ہے نا پانی ڈال رہے تھے. فرماتے ہیں فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کان عندک ماء بعد فی سنت والا کرانا, یہ کرانا. حضور نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس رات سے رکھا ہوا مشکیزے میں کوئی پانی ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم اسی حوض سے منہ لگا کر پانی پی لیں. والرجل یحبل الماء فی حائط, اور وہ شخص اسی وقت یعنی اس وقت باغ میں پانی ڈال رہے تھے تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ عندی ماء بعد فی سنت, میرے پاس پانی موجود ہے اور وہ رات سے مشکیزے میں تھا. تو فانطلق الی العریش, تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ گئے چھپر کے پاس. فساقب فی قدح ماء, اپنے یعنی برتن میں جو ہے نا وہ پیالے میں پانی ڈالا. تو محلب علیہ مندہ جن لہو, اور بکری کا دودھ دوہا اللہ کر اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر دیا. فشرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو حضور نے پی لیا. تو معادہ, پھر اس نے دوبارہ جو ہے نا اس میں دودھ پلایا. تو فشرب الرجل الذی جاء معه, تو جو شخص آپ کے ساتھ آئے تھے انہیں بھی دودھ پی لیا. یہ روایت ہے, اس سے پہلے بھی یہ روایت آئی ہے. اس میں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈے پانی کو طلب کیا. ٹھنڈا پانی بڑی عظیم نعمت ہے, اور روایت میں یہ بات اس سے پہلے بھی گزری ہے کہ ٹھنڈا پانی ایسی نعمت ہے کہ کل قیامت میں اس کے بارے میں اللہ پاک یاد دہانی کرائیں گے بندوں کو, اور پوچھیں گے کہ کیا ہم نے دنیا تم کو صحت نہیں دی تھی, اور کیا ہم نے تم کو ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا. ایسی بڑی نعمت ہے ٹھنڈا پانی. حضور کو ایک بڑی عجیب لگی مجھے, علماء نے جو بات لکھی ہے کہ دنیاوی چیزوں میں عام طور پر کوئی چیز رغبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول نہیں فرماتے تھے. ایک چیز تھی جو آپ کو مرغوب تھی, جس کا باضابطہ اہتمام کیا جاتا تھا, وہ ٹھنڈا پانی تھا. آپ کسی چیز کو رغبت کے ساتھ یعنی بول کر نہیں منگاتے تھے کہ بھائی میرے لیے یہ چیز لاؤ, مجھے جو ہے نا چکن تکہ چاہیے, مٹن تکہ چاہیے, یہ روٹی چاہیے, یہ بریانی چاہیے, یہ کھانے میں اس کا اہتمام ہو, پینے میں اس کا اہتمام ہو. کبھی آپ نے کسی چیز کے بارے میں تقاضا نہیں کیا کہ یہ لایا جائے, یہ بنایا جائے. لیکن ایک ٹھنڈا پانی ہوتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ منگاتے تھے, اور یہ پوچھا کرتے تھے کہ ٹھنڈا پانی اگر ہے تو وہ دیں. اور یہاں پر وہی فرما رہے ہیں کہ رات کا رکھا ہوا ٹھنڈا پانی اگر ہے تو دے دو, اور اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, یہی پانی ہم پی لیتے ہیں. بہت بڑی نعمت. لیکن آدمی اپنی مزاج اور طبیعت کو بھی دیکھ لے کہ بھائی اس میں یہ آپ صلی اللہ آپ کو ایک پسند تھی یہ چیز. یہاں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں, جو عادتیں ہیں, کچھ وہ ہیں جن کو سنن حالیہ کہا جاتا ہے, اور کچھ سنتیں وہ ہیں جن کو سنن عادیہ کہا جاتا ہے. سنن حالیہ یعنی وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے ہیں شریعت کے حکم کے طور پر, وہ سنت ہوتے ہیں, ان کو سنن حالیہ کہا جاتا ہے. ان میں اتباع کا حکم ہے, سنن حالیہ ان میں اتباع کی جائے گی جو آپ نے بطور شریعت کے کیے ہیں. شریعت کا حکم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے اس لیے. اور کچھ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تھے کہ جو آپ نے شریعت کے حکم کے طور پر نہیں بلکہ یعنی طبیعت کی وجہ سے آپ نے کیے ہیں, ضرورت کی وجہ سے آپ نے کر لیے ہیں, تو وہ سنتیں سنن عادیہ کہلاتی ہیں. ان میں اتباع کا یعنی ان میں اتباع کرنا ضروری نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو رغبت سے آپ کھاتے تھے, تو امت میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی کدو کھانا سنت ہے, آپ لوگ کدو رغبت سے کھایا کریں. کوئی کھائے گا تو ٹھیک ہے, اتباع عشق اور اتباع محبت یعنی محبت کے دعوے سے, محبت کے تقاضے کی بنیاد پر اگر کھائے گا تو ثواب ملے گا, نہیں کھائے گا تو یہ نہیں کہیں گے کہ اخلاف سنت ہے. جو چیزیں اللہ کے نبی نے یعنی طبی تقاضوں کی وجہ سے کی ہیں, شریعت کا حکم کے طور پر نہیں کی ہیں, تو وہ سنن عادیہ کہلاتی ہیں. عادتاً اللہ کے نبی نے کیا ہے وہ, تو اس میں اتباع نہیں ہوگی, اس میں اتباع کا حکم نہیں ہے. محبت کی وجہ سے اگر کوئی کرے گا تو ثواب ملے گا, محبت کی وجہ سے کدو کھائیں گے, حضور نے کھایا تھا میں بھی کھاؤں گا تو ثواب ملے گا, اتباع ہے اس کے اندر اس وجہ سے. لیکن اس کا حکم امت کو نہیں دیا جائے گا کہ آپ یہ کام کریں. اسی طرح یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈا پانی پسندیدہ تھا, تو تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا ایک مزاج تھا جس کی وجہ سے آپ نے پسند فرمایا. ہم بھی اسی تناظر میں ٹھنڈے پانی کو اگر جو ہے یعنی پسند کریں گے کہ حضور کو پسند تھا تو اس لیے ثواب تو ملے گا, لیکن امت کو حکم یہ نہیں دیا جائے گا کہ ٹھنڈا پانی پینا سنت ہے تم لوگ پیو, سنن عادیہ میں سے ہے. تو یہ فرق ہم کو ملحوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن عادیہ ہوتی ہیں جس میں اتباع کا حکم ہے, کچھ سنن عادیہ ہوتی ہیں بطور عادت کے اللہ کے نبی نے کیے ہیں تو ان میں اتباع نہیں ہے. محبت سے اگر آدمی کرے گا تو ثواب ضرور ملتا ہے اس میں بھی. یہ تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی. دوسری بات یہی ہے کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بھائی اگر پانی ہو تو ٹھیک ہے, نہیں تو حوض سے جو ہے نا ہم منہ لگا کر پانی پی لیں گے. تو اس طرح تو عام اصول تو یہی ہے کہ آدمی جو ہے نا پانی ایسا بڑی چیزوں سے منہ لگا کر نہ پیے. اللہ کے نبی نے خود منع فرمایا روایتوں کے اندر. قروت کے خلاف بھی ہے یہ چیز, لیکن اللہ کے نبی یہاں پر खुद फरमा रहे हैं कि भाई मैं खुद जो है ना, अगर पानी दूसरा नहीं होगा तो यहाँ से इस हौज से ही मुँह लगा कर पी लूंगा। इससे बात मालूम हुई है कि बराह रास्त अगर कोई मुँह लगा कर पी ले बड़े बर्तनों से, बड़ी चीज़ों से, उसकी भी गुंजाइश हो, कोई मसला नहीं हो। हमारे पास ये फाउंटेन होता है, इसमें ऐसे ही होता है, मुँह लगा कर पी लेते हैं। खैर यहाँ तो पानी बहुत हल्का सा आता है। बड़े बर्तनों, उलमा ने लिखा है कि यही हुक्म बड़े बर्तनों वगैरह का होता है, बड़े हौज़ों से बड़े बर्तनों से पीने का। एक तो ये होता है कि रिवायतों में जो अल्लाह के नबी ने मना फरमाया वो इस पस मंजर में है कि पानी जो ज़्यादा होता है तो मुँह लगा कर पीने की वजह से पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है खुद आदमी के ऊपर। बड़ा हम नहीं पीते, हमारे पास बॉटल है, हर एक के पास जो है ना अपना छोटा छोटा बॉटल मौजूद होता है जिससे हम पीते हैं। लेकिन पहले ज़माने में जो है ना इस तरह की नज़ाकत और नफीस चीज़ें और नज़ाकत वाली चीज़ें नहीं होती थी। हर आदमी की अपनी ज़रूरत के अतबार से छोटी छोटी चीज़ें बनी हुई नहीं होती थी। इज्तमाही तौर पर जो है ना जो चीज़ें रखी हुई होती थी वही इस्तेमाल में भी होती थी। खाने के लिए बड़े बर्तन होते थे, हमारी तरह छोटी छोटी प्लेटें नहीं होती थी। एक बर्तन में पाँच पाँच दस दस आदमी खा रहे हैं, ऐसा होता था। जैसे हम लोग मंदी खाने के लिए जाते हैं तो बड़े बर्तन में मंदी रखी हुई है। सहाबा इकराम के मिजाज उमूमन खाने का ऐसा होता था। तो बहरहाल बड़े बर्तन रखे हुए हैं, पानी पीने की ज़रूरत पड़ गई तो बराह रास्त अगर कोई पीना चाहे तो पी ले। लेकिन ये चीज़ जाहिर सी बात है कि एक तो अदब के ख़िलाफ़ मालूम होती है और दूसरा यह है कि खुद कभी कभी ये चीज़ें आदमी के ऊपर जो है ना पानी भगोना उठा लिया पानी पीने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि भगोने से पानी खुद इतनी प्रेशर से आएगा, इतने दबाव से आएगा कि खुद आदमी भीग जाएगा और पता नहीं कि मुँह में आएगा भी नहीं आएगा। तो बहरहाल ख़िलाफ़ अदब होने की वजह से अल्लाह के नबी ने मना फरमाया, लेकिन ज़रूरत के मौके पर अगर कोई ऐसी सूरत हाल पेश आ जाती है तो पिया जा सकता है। इस हदीस से एक बात यह मालूम होती है। उसके बाद रिवायत है बाब खिदमत सगार के बाद, छोटे बच्चों के बड़ों की खिदमत करने का यह बाब है। इस रिवायत में हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि कुन तुकारिमन अलहय्य असकीहिम उमूमती व अना असगरहुम अलफ़ज़ील, कि मैं जो है हमारे अपने कबीले के पास खड़ा हुआ था, मैं उनको अपनी चचाएँ वगैरह थे तो मैं उनको पिला रहा था, और पिलाने से मुराद शराब पिलाना, उस वक्त की बात है जब शराब हलाल थी। तो फरमाते हैं कि हुर्रिमत अलख़म्र, तो शराब उस वक्त किसी की तरफ से कहा गया कि भी शराब हराम कर दी गई है और हम यहाँ पीने में हैं। तो फरमाते हैं कि फौरन ही जो है ना कहा कि इकफीहा, बर्तनों को उलट दो। चुनांचे सहाबा उठे जो पी रहे थे, उनके चचा वगैरह सब के सब जो है बर्तनों को उन लोगों ने उलट दिया। तो कुलतुलिया नसिन, तो हजरत मोतमिर के वालिद कहते हैं कि मैंने हजरत अनस से कहा कि मैं शराब हूँ, कि उस वक्त जो शराब होती थी वो कैसी होती थी। तो फरमाने लगे कि रू तब वसरों के तर खजूर, ताज़ा खजूरों की और सूखी खजूरों की हुआ करती थी, पके हुए खजूरों की और गैर पके हुए कच्चे खजूरों की हुआ करती थी। तो फ़काल अबू बकर इब्न अनस वकान अलखमर हूँ और अमीन फिर अनस हूँ, तो हजरत अबू बकर इब्न अनस कहते हैं कि उस वक्त शराब जो है ना उनकी उमूमन जो है ना ये हुआ करती थी। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसका इनकार नहीं किया। बहरहाल ये एक रिवायत है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इसे जो बात जिक्र करना चाहते हैं वो ये है कि भाई हजरत अनस फरमाते हैं कि मैं बच्चा था और अपने कबीले के लोगों को पिला रहा था। इससे यह बात मालूम हुई कि छोटे बच्चे जो है ना बड़ों की खिदमत करें करना चाहिए, शरीयत में जो है ना ये तालीम मिलती है कि छोटे बच्चों में जाहिर सी बात है कि उनको सीखने की ज़रूरत होती है। बच्चे हैं तो बच्चों को काम न लगाया जाए, एक मिजाज लोगों में ये भी पाया जाता है, लगाना चाहिए काम ताकि उनको जो है ना मेहमानों को देने करने का सलीका उनके अंदर भी आ जाए, बड़ों की खिदमत का शौक़ और ज़ौक़ उनके अंदर पैदा हो जाए। बच्चे हैं तो खिदमत होनी चाहिए, जो खादिम होता है वो मखदूम होता है, जो खादिम नहीं होता वो मखदूम भी नहीं होता। आदत होनी चाहिए, बच्चों को काम लगाना चाहिए, बड़ों की खिदमत करवानी चाहिए। माँ बाप हैं उनकी खिदमत होनी चाहिए, चचा हैं ताया हैं उनकी खिदमत होनी चाहिए, दादा दादी नाना नानी उनकी खिदमत होनी चाहिए, मिजाज होना चाहिए। नहीं करते हैं तो तालीमन उनसे तरगीबन उनसे करवाना चाहिए बोल करके भी खिदमत करें उनसे, क्योंकि एक तो उनका हक होता है और दूसरा है कि बच्चों के अखलाक होने चाहिए कि खिदमत का जज्बा फी नफसी इनके अंदर होना चाहिए, और एक ये है कि उनको ज़रूरत भी होती है बाद दफ़ा बड़ों को बुजुर्गों को, और तीसरी बात यह है कि खुद आदमी के अंदर भी यानी जो इसका फ़ायदा खुद वो भी महसूस करता है आगे जाकर। इसीलिए मशहूर मकूला है खादिम जो होता है मखदूम भी होता है, जो खिदमत करता है तो बाद में अल्लाह तबारक व तआला उसकी खिदमत करवाते भी हैं। अल्लाह का ज़ाबता ये है, जैसा आदमी करता है वैसा भरता भी है। आज खिदमत कर रहा है तो कल दूसरे लोग उसकी खिदमत भी करेंगे। और फिर बड़ों के आदाब और इकराम के कबील से भी है ये चीज़ें, भाई उनकी खिदमत होनी चाहिए, एहतराम उनका होना चाहिए। और रिवायतों में बाद रिवायत में ये भी मिलता है कि कोई बड़ों का अदब और एहतराम और उनकी खिदमत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला बुढ़ापे में उसके लिए तय कर देते हैं कि उसकी खिदमत की जाए। बुढ़ापे में आदमी को तय कर दिया जाता है, जब आदमी बचपने में अगर कोई किसी की खिदमत कर रहा है एहतराम कर रहा है तो अल्लाह तबारक व तआला बूढ़ा होने के वक्त में उसके लिए चीज़ तय कर देते हैं कि जब वो बूढ़ा होगा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इंतज़ाम होगा कि लोग उसकी खिदमत करेंगे, उसका अदब और इकराम करेंगे। तो बहरहाल ये इस्लामी तालीम है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको सही सही अमल करना।